ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथात श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद अध्याय सात श्लोक संख्या 43 और 44। श्लोक संख्या 43 का अनुवाद इस प्रकार से है। तस्यापि दर्शयामाशा स्ववीर्यं जलकल्मषा यच्चकार गले नीलं तच्च साधु विभूषणम्। अपयश के कारण क्षीर सागर से उत्पन्न विष्णु मानो अपनी शक्ति का परिचय शिवजी के गले में नीली रेखा बनाकर दिया हो, किंतु अब वही रेखा भगवान का आभूषण मानी जाती है। और अब आज का श्लोक बोर्ड पर है, इसको तप्यन्ते लोक तापेन साधवा परायास जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य है इस डिवाइन ग्रेस से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तप्यन्ते स्वेच्छा से कष्ट उठाते हैं, लोकतापेन सामान्य लोगों के कष्ट के कारण, साधवा साधु पुरुष प्रयाशः प्राय सदैव जनाः ऐसे पुरुष परम आराधनम पूजा की सर्वोच्च विधि तत् वह कार्य ही निसंदेह पुरुषस्य परम पुरुष का अखिल आत्मनः जो सबका परमात्मा है। अनुवाद, कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। कृपया इस अनुवाद को दोहराएं। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजने की ये सर्वोच्च विधि मानी जाती है। तात्पर्य, जो लोग अन्यों के कल्याण के लिए कार्य करने में व्यस्त रहते हैं वे किस प्रकार भगवान द्वारा तुरंत मान्य होते हैं, इसकी व्याख्या यहां पर दी गई है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, या इदं परमं भूयं मत भक्तेष्वदि भि अधास्यति न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः। जो व्यक्ति मेरे भक्त को भगवत गीता के संदेश का उपदेश देता है वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य हैं, किंतु परम कल्याण कार्य है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। अन्य कल्याण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति के नियम तथा कर्म फल रोके नहीं जा सकते। भाग्य या कर्म के नियमों के कारण ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी को न्यायालय का आदेश मिलता है तो उसे इसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे इससे लाभ हो या हानि। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कर्म तथा उसके फल के अधीन है, कोई इसे बदल नहीं सकता। इसलिए शास्त्र का वचन है, तस्यैव हेतो प्रयते कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमतामुपर्यथा। मनुष्य को उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कर्म फल के कारण ब्रह्मांड में ऊपर नीचे चक्कर लगाने में कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता। वे क्या है? मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। यदि वह कृष्ण भावना मृत को सारे विश्व में प्रसारित करने का प्रयत्न करता है तो उसे श्रेष्ठतम कल्याण कार्य करने वाला समझना चाहिए। भगवान स्वतः उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके लिए प्राप्त करने को बचता ही क्या है? यदि भगवान ने किसी को मान्यता दे दी है तो वह भगवान से भले ही कुछ ना मांगे, किंतु प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है, तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पुनः जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, तप्यंत लोकतापेन साधवा प्रयासो जना, सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी यही होगा कि लोगों को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाया जाए, क्योंकि सारे बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। स्वयं भगवान भी मानवता के कष्ट को भगाने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युतानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती है और अधर्म को प्राधान्य होता है, उस समय मैं अवतरित होता हूँ। पुण्य आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के अतिरिक्त धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। अतएव सारे शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। इसके फलस्वरूप सामान्य लोगों को जो परम लाभ मिलता है, उसके कारण भगवान भक्त द्वारा की गई सेवा को तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं मन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणवामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भागवतम का। हमने काफी प्रयास किया कि इस श्लोक पर कोई अनुभवी व्यक्ता जिन्होंने श्लोक को अपने जीवन में धारण किया है वो बोले। कहीं प्रयास किया कि मोहन रूप प्रभु जी आके, मोगिया रूप जी आके प्रभु जी इस पर करें, बट समाव ऐसा अरेंज नहीं हो पाया। सो समाव मुझे इस श्लोक पर बोलने के लिए कहा गया। और निश्चित रूप से मेरा कोई ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है इस श्लोक में, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, इतना हाई स्टैंडर्ड सेट किया गया है, तप्यंत लोक तापे न साधवा प्रयासो जना। परंतु फिर भी थ्योरिटिकली शास्त्रों से पढ़ के कट कॉपी पेस्ट करके कुछ प्रयास किया है इसको प्रिपेयर करने का। और पर मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट थ्योरिटिकली बोल के ही धीरे धीरे एटलीस्ट एक स्टेप इस गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आप सब भक्तों के कृपा की याचना करता हूँ कि अपने शुद्धिकरण के लिए और आप सब के लिए मैं कुछ इस पर बोल सकूँ। जैसे कि ये श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद चल रहा है। श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं, हम जानते हैं। जैसे 6ठे स्कंद में पोषण था, 7वें स्कंद में ऊती, तो 8वें स्कंद का क्या विषय है? मनवंतर। और इससे पहले के स्कंदों में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न पूछा और सुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत ही विस्तार से स्वयंभू मनु के जो वंशज हैं उनका व्याख्यान किया। और 8वें स्कंद में अन्य जो मनु हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं कि इन अन्य मनु के बारे में भी विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि परीक्षित महाराज खुद एक क्षत्रिय हैं और नेचुरली जो इस पूरे सृष्टि को रूल कर रहे हैं उनके बारे में जानने के लिए वो बहुत उत्सुक हैं, और विशेषकर इसलिए क्योंकि हर मनु में किसी ना किसी भगवान का अवतार हुआ है। तो इससे के पहले के अध्याय में हमने देखा कि कौन कौन से अवतार हुए, ये कौन सा मनु चल रहा है इस अध्याय में, जो ये शीर्षक है शिवजी द्वारा विश्व पान से ब्रह्मांड की रक्षा। तो हर अध्याय में सीक्वेंशली अलग अलग मनु की चर्चा हो रही है और उन मनु में कौन से भगवान ने अवतार लिया। तो इन 14 मनु में से अभी हम कौन से मनु में, कौन से नंबर वाले में, नहीं पांचवे नहीं, उससे एक आगे छठे मनु में। जो छठे मनु है चक्षुष मनु, और इससे पहले हमने गजेंद्र लीला का पढ़ा, और चक्षुष मनु में समुद्र मंथन लीला हुई जिसमें भगवान ने अलग अलग रूप में अवतार लिया। तो आज का जैसे ये श्लोक है बोर्ड पर लिखा हुआ है, तप्यंत लोक तापेन साध्वा प्रयासो जना परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। परम आराधनम, आराधना मतलब पूजा करना, परम आराधनम सुप्रीम वर्शिप, सभी आराधनाओं में से सबसे श्रेष्ठ आराधना कौन सी है, आराधना किसकी, पुरुषस्य अखिलात्मना, ऐसे पुरुष की जो परम पुरुष है, अखिल आत्मना अखिल जगत के आत्मा है, सुपर सोल ऑफ द एंटायर यूनिवर्स ऑल लिविंग एंटिटीज, ऐसे परम पुरुष की परम आराधना कौन सी है, तप्यंते लोक तापेना। तप्यंते का अर्थ क्या हुआ, इस तप को, तप मतलब तपस्या, तपस्या का दूसरा शब्द है वॉलंटरीली सफरिंग, स्वेच्छा से अगर हम इस तपस्या को स्वीकार करते हैं, तप्यंते किस उद्देश्य से, लोकतापेना, लोकतापेना का अर्थ हुआ लोगों जिस तप में जलाए जा रहे हैं उनकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को देखकर उस करुणा से अगर हम स्वेच्छा से इस तप को स्वीकार करते हैं। साधवा प्रयासो जना, जो साधु लोग हैं भगवान के भक्त हैं वो अक्सर, जैसा कि अनुवाद में कहा गया है, कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूछने की सर्वोच्च विधि मानी जाती है। और तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने इस पर स्पष्ट किया कि कैसे इस श्लोक में पहली लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो अन्य, जो लोग अन्यों के कल्याण के लिए कार्य करने में व्यस्त रहते हैं वे किस प्रकार भगवान द्वारा तुरंत मान्य होते हैं। ऐसे लोग जो अन्यों के लिए कल्याण कार्य में व्यस्त रहते हैं, और अन्य जो कल्याण कार्य है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, परंतु शिला प्रभुपाद बता दो उसमें जो परम कल्याणकारी कार्य है, इनफैक्ट ये बताया गया और कोई कल्याण कार्य से वास्तव में कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई किसी के कर्मों के बंधन में हेर फेर किसी भी साधारण कार्य से नहीं कर सकता। तो एकमात्र सबसे ऊंचा कल्याण कार्य है उस व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत के स्तर पर लाना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में स्पष्ट किया कि कैसे जो इस कार्य में लगे हुए हैं, जो परम कल्याण कार्य में कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने में लगे हुए हैं, वो पूरे मनुष्य मानव जाति के सबसे बड़े हितकारी हैं। तो इस पूरे चैप्टर्स पे और खासकर इस विशेष वर्ष पर मैंने आज का जो मैं इस पे बोलने का प्रयास करूंगा उसको मैंने तीन भाग में बांटा है, ट्रिपल सी, सी सी एंड सी। सो इसको अगर आप थोड़ा साइड कर सके, तो जो पहला सी है इट्स अबाउट क्रेडिट। हम देखते हैं इस अध्याय में कैसे भगवान कृष्ण शिवजी को ये श्रेय प्रदान करना चाह रहे हैं, और यही भगवान का स्वभाव भी है। भगवान सदैव अपने भक्तों को चीजों का क्रेडिट देना चाहते हैं, उसको श्रेय प्रदान करना चाहते हैं, और भक्त भी अपने हर सफलता हर कार्य का श्रेय भगवान को देना चाहता है। तो इससे पहली शिक्षा ये ले सकते हैं कि कैसे जो भगवान है अपने भक्तों को अलग अलग कार्यों का श्रेय प्रदान करना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा भगवान इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं, परम शक्तिशाली हैं, और इस लीला में उन्होंने पहले अलग अलग मुश्किलें आई परंतु भगवान ने उसको खुद ही सॉल्व कर दिया। उदाहरण के लिए जैसे पहले देवतागण प्रार्थना करने के पास गए, भगवान ने सोल्यूशन बताया समुद्र मंथन कीजिए। उसके बाद वो मंदिर पर्वत को उठाने गए तो सारे क्रश हो गए, भगवान ने उठा के यहाँ पे रखा। फिर कैसे वासुकी को लाए, फिर वो समुद्र नीचे डूब रहा था, पहाड़ नीचे डूब रहा था समुद्र के, तो भगवान ने कश्यप अवतार लेकर उसको उठाया। तो भगवान ने अलग अलग समस्याओं का समाधान किया। चाहते तो भगवान यहाँ पर भी हालाहाल जो विष उत्पन्न हो उसको पी सकते थे, परंतु उन्होंने भेजा शिव जी के पास, क्योंकि वो इसका श्रेय प्रदान करना चाहते थे भगवान शिव को। और ऐसे ही हम शास्त्रों में अलग अलग उदाहरण पढ़ते हैं कि किस प्रकार से भगवान सदैव ये क्रेडिट अपने डिवोटीज को पास करना चाहते हैं। जैसे कि परसों श्री चैतन्य चरितमृत में कक्षा हो रही है, उसमें जो हुई उसमें प्रसंग चल रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का। तो जब इस अध्याय की शुरुआत हुई तो उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले ही श्लोक में लिख रहे हैं, संचारे रामाधिभि भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराधिभिर एतेर अमुन वितृणस्तद्यत्व रत्नालय आत्म प्रयाति। वो भगवान गौरांग को किससे कंपेयर कर रहे हैं, गौराधिभिर, गौरांग महाप्रभु कैसे हैं, इस जो पूरा सिद्धांत है इसके समुद्र हैं। और रामानंद राय किसके समान है, एक बादल के समान, कि जैसे एक बादल समुद्र से पानी को उठाता है और फिर वर्षा करता है समुद्र पर ही, तो उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर राधा तत्व को कौन जान सकता था, परंतु फिर भी उन्होंने माध्यम बनाया श्री रामानंद राय को। और रामानंद राय खुद क्या कह रहे हैं आगे, राय कहे आमी नट तुमी सूत्रधार यही मत नाचाओताचे चाही नाची बार। राय कहे आमी नट तुमी सूत्रधार, आप किस समान है, सूत्रधार समान, जैसे कि एक पपेट होता है और उसकी स्ट्रिंग्स होती हैं, तो असली नचाने वाले तो आप ही और मैं एक पपेट के समान हूं। तो रामानंद राय क्रेडिट दे रहे हैं भगवान को, और भगवान ने रामानंद राय की महानता को दर्शाने के लिए उनके मुख से ये कृष्ण कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इन सब सिद्धांतों को वो उजागर करवा रहे हैं रामानंद राय के मुख से। तो क्रेडिट दे रहे हैं रामानंद राय को। ऐसी श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं जब महाभारत का युद्ध हो गया, युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने के लिए युधिष्ठिर महाराज बहुत ही असंतुष्ट थे कि मेरी वजह से इतने सारे लोगों की हत्या हो गई। तो देखते हैं भगवान के तीन तीन अवतार, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान के शक्तावेश अवतार व्यासदेव, भगवान के पुरुष अवतार शिरोदय विष्णु जो उनके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, तीनों भगवान मिलकर अवतार मिलकर युधिष्ठिर महाराज को पैसिफाई नहीं कर पाए कि आपने जो किया आप अपने धर्म का पालन कर रहे थे, आपने बिल्कुल सही किया, भगवान चाहते तो कर सकते थे परंतु भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों, वो किसको ये श्रेय प्रदान करना चाहते थे, भीष्म देव को। ऐसे ही भगवान ने भगवत गीता का श्रेय प्रदान किया अर्जुन को, अर्जुन को माध्यम बनाया। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को ये क्रेडिट प्रदान करते हैं, और हम देखते हैं यही क्रेडिट भगवान ने प्रदान किया श्रील प्रभुपाद को भी। एक बार श्रील प्रभुपाद के शिष्य उनके पास आए, उन्होंने श्रील प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप इतने महान महान आचार्य हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो बिल्कुल एम्पावर्ड आचार्य थे, वो चाहते तो वो प्रचार कर सकते थे कृष्ण भावनामृत का पूरे विश्व में, जो चैतन्य महाप्रभु की प्रिडिक्शन है। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा कि हाँ, उन्होंने ये कार्य मेरे लिए छोड़ा क्योंकि वो ये क्रेडिट मुझे देना चाहते थे। और श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि आप सबको, श्रील प्रभुपाद अपने पूर्ववर्ती आचार्य और भगवान को ही क्रेडिट नहीं दे रहे, वो अपने शिष्यों को भी ये क्रेडिट प्रदान कर रहे हैं। वो कहते थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं आप सबको भेजा है। प्रभुपाद अक्सर कहते थे मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति हूं, मैं बहुत अच्छा खाता हूं और बस सोता हूं, बाकी ये सब जो नवयुवक शिष्य हैं ये सड़कों पर जाकर इतनी मेहनत करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, ये भगवान श्रील प्रभुपाद ये क्रेडिट किसको देते थे, अपने शिष्यों को। ऐसे ही एक बार अमृतसर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस कॉन्फ्रेंस में गुरुदास प्रभु गए थे, और गुरुदास प्रभु ने क्योंकि प्रभुपाद से सुन रखा था, उन्होंने बिल्कुल एज इट इज सिद्धांत को प्रकट किया, और उन्होंने इतना बोल्डली प्रकट किया कि वहां के जो ऑर्गेनाइजर्स थे बहुत ही विचलित हो गए। जय श्री श्री राधा राधिकरमन कृष्ण बलराम की, गौ नीता जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बाद में प्रभुपाद के पास उनकी शिकायत करने आए कि प्रभुपाद प्रभुपाद ये आपके जो शिष्य हैं खासकर अमेरिकी शिष्य हैं अपने आप को क्या समझते हैं, उन्होंने इतना ऑफेंसिव लैंग्वेज में स्टेज पर आके बोला। तो प्रभुपाद ने पूछा उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके गुरुदास हैं शिष्य इन्होंने बोला कि अगर सब चीज एक है तो एक प्लेट पर रखा हुआ हलवा और गली में रखा हुआ जो स्टूल है ये भी एक है तो आप हलवा क्यों खाते हो, स्टूल को खाओ। तो प्रभुपाद ने कहा कि एक्चुअली वो अमेरिकी है ना तो बहुत ग्राफिक एग्जाम्पल देते हैं, तो किसी तरह उसको पैसिफाई करके भेजा। जब वो गया तो प्रभुपाद गुरुदास प्रो की ओर मुड़े और कहा वेरी नाइस एग्जाम्पल, और फिर आगे पूछा कैन आई यूज इन माई लेक्चर्स। तो गुरुदास प्रो ने सब चीज प्रभुपाद से ही सुन के वो बोला, बट प्रभुपाद क्रेडिट किसको दे रहे हैं, अपने शिष्यों को। तो उसी प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि भगवान सारा क्रेडिट प्रदान कर रहे हैं शिव जी को, और आगे के अध्याय में देखेंगे शिव जी भगवान की महानता को स्थापित करने के लिए कैसे वो जो मोहिनी रूप है उससे विचलित हो जाएंगे साधारण दृष्टि में, क्योंकि वो भगवान की महानता को स्थापित करना चाहते थे। सो दैट्स द फर्स्ट सी क्रेडिट। उसके बाद दूसरा जो इस श्लोक में आया वो है कंपैशन करुणा। यहां पर हम देखते हैं कि भगवान शिव किस प्रकार से करुणावश इस हलाहल विष को पीने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे जन साधारण पर ये कृपा करना चाहते थे। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये साधुओं का लक्षण है। हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि जैसे हर अगर भौतिक सुख है तो वो किसको लीड करेगा, भौतिक सुख के बाद एक चीज आना आवश्यक है, क्या, भौतिक दुख। उसी प्रकार से आध्यात्मिक सुख अगर किसी को कृष्ण भावनामृत का सुख मिल रहा है उसके उसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसे निश्चित रूप से ये पीड़ा ये दर्द होगा कि कैसे जो ये बद्ध जीव आत्माएं हैं इनको ये आनंद क्यों नहीं मिल रहा। इसका हम वर्णन देखते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होने के पूर्व आदि लीला 13वें अध्याय में इस प्रकार प्रसंग आता है, प्रभुर आविर्भाव पूर्वे यत वैष्णवगण अद्वैताचार्य स्थाने करे न गमन। प्रभुर आविर्भाव पूर्वे, महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व क्या हो रहा था, यत वैष्णवगण अद्वैत आचार्य स्थाने करे न गमन, सारे वैष्णवगण कहां गए, अद्वैत आचार्य के घर पर। गीत भागवते कहे आचार्य गोसाई ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति रा बढ़ाई। और इन जब सब मिल गए तो अद्वैत आचार्य क्या करते थे, गीत भागवत कहे, भगवत गीता और श्रीमद भागवतम का उच्चारण करते थे, और ज्ञान कर्म निंदी करी, ज्ञान और कर्म का जो पात जो पथ है उसका फिलोसफिकली उसको बिल्कुल ध्वस्त कर देते थे। सर्वशास्त्र कहे कृष्ण भक्ति रा व्याख्यान ज्ञान योग तपो धर्म नाही माने आन। तारे संगे आनंदे कारी वैष्णवे रागन कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। तो सारे वैष्णवगण क्या करते थे, तारे संगे आनंदे करे खूब आनंद में वैष्णवेरा गण कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन करके कृष्ण भावनामृत में भाव विभोर होते थे। और उनकी एक्सटेसिस का जो वर्णन है वो एक अलग ही वर्णन है, किस प्रकार से इतना एक्सटेटिक हो जाते थे कि अपने शरीर में उन भावों को संभाल भी नहीं पाते थे। परंतु आगे अगले प्यार में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या लिखते हैं, लोकेरा निस्तार हेतु करे न चिंतन के मते ए सब लोकेरा हाबितारण। लोकेरा निस्तार हेतु करे न चिंतन, जो जन साधारण है लोक है, निस्तार हेतु करे न चिंतन, उनको उनकी स्थिति देखकर चिंतन हुआ। के मते ए सब लोकेरा हाबितारण कृष्ण अवतारी करे न भक्ति विस्तार तबे ता सकल लोकेरा हाइवे निस्तार। तो शिला द्वैत प्रभु ने सोचा अगर भगवान कृष्ण खुद प्रकट हो और भक्ति का प्रचार करें तब इन जन साधारण लोगों का उद्धार होना संभव है। तो हम देखते हैं कि अद्वैत आचार्य और सारे वैष्णवगण आध्यात्मिक आनंद में डूबे हुए थे, परंतु उस आध्यात्मिक आनंद का परिणाम क्या है? ये करुणा से जनसाधारण के लिए उस दुख को महसूस करना। और बता रहे थे, अगर गौरगोपाल गुरु अपने लेक्चर में बता रहे थे कि अगर हमें बहुत आनंद हो रहा है परंतु अन्य जीवों के लिए करुणा अनुभव नहीं हो रही, तो ये कृष्ण भावनामृत का आनंद नहीं है, ये कुछ और ही आनंद है। कृष्ण भावनामृत आनंद का प्रामाणिक आनंद तब है जब ऐसा जनसाधारण के लिए करुणा उत्पन्न हो, कंपैशन, और दुख अनुभव होने से क्या हो, जैसे यहां पर लिखा है, लोकेरा निस्तार हेतु कार्य न चिंतन। जब दुख होगा तो क्या होगा? चिंतन होगा। किस बात का चिंतन? के मते ए सब लोकेरा हाबितारण, कि कैसे इन लोगों का उद्धार हो। यह चिंतन होना कि कैसे मैं अन्य लोगों की सहायता कर सकता हूं। और जब यह चिंतन होगा तो उसका अगला फल क्या है? हृदय से प्रार्थनाएं निकलेंगी। कृष्ण अवतारी करें भक्ति विस्तार तवे ते सकल लोकेरा हाइबे निस्तार, कि मैं खुद इस चीज को करने में सक्षम नहीं हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण अगर खुद यहां पर आए या उनकी कृपा से यह संभव है। और देखते हैं जैसे शिला प्रभुपाद जलदूत पर गए तो वहां पर उन्होंने जो कविता लिखी उसमें भी यही कह रहे हैं कि मैं इस कार्य को करने में खुद सक्षम नहीं हूं, परंतु मेरे गुरु महाराज की इच्छा है इसलिए ये निश्चित रूप से पूरी होगी, और भगवान से करुणा की प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको ये माध्यम बनाए। तो ये जन साथ, तो ये महान जो वैष्णव है उनका ये गुण है कि करुणावश वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध में ददीची मुनि का हम प्रसंग पढ़ते हैं कि कैसे जब वृत्तासुर प्रकट हुआ और सारे देवतागण को कोई उपाय नहीं मिल रहा था उनको पराजय करने का, तो भगवान ने उन्हें भेजा कि आप ददीची मुनि के पास जाओ और उनसे हड्डियों की मांग करो। तो बड़ा ये भी एक बहुत ही विचित्र प्रसंग है, परंतु ददीची मुनि वहां पर इंद्र और अन्य देवताओं को ये श्लोक कहते हैं। श्लोक बता, ददीची मुनि इस प्रकार कहते हैं, हे देवों, जो ना तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और ना धार्मिक नियमों या अक्षुण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, वे निश्चय ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। तो बहुत ही हैवी शब्दों में ददीची मुनि इस प्रकार लिख रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अन्य प्राणियों पर दया नहीं दिखाता और ना ही धर्मों के नियमों के लिए या अक्षुणय कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, तो उसे जड़ प्राणी भी धिक्कारते हैं। और अगले श्लोक में वो कहते हैं, यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है, तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना गया है। तो जो प्रमाणिक धर्म के जो नियम है, हम प्रमाणिक धर्म पालन कर रहे हैं, उसमें वास्तव में प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसका मापदंड क्या है? इसका मापदंड है अन्य जीवों के दुखों को देखकर मुझे कितना दुख होता है, या जब मैं अन्य जीवों को खुश देखता हूं, वास्तविक में उन्हें खुश देखता हूं, तो क्या मैं प्रसन्न होता हूं? नहीं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ददीची मुनि कह रहे हैं ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना गया है, इमॉर्टल। और ऐसे ही हम अनेक प्रसंग पढ़ते हैं शास्त्रों में इस बात को संबोधित करते हुए कि कैसे जो वैष्णवगण है या महान, यहाँ पर भगवान शिव 12 महाजनों में से एक है और इस सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं खुद इस श्लोक के माध्यम से। और ऐसे ही अनेक कई उदाहरण हैं, जैसे हम पढ़ते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद प्रभु का उदाहरण। नित्यानंद प्रभु प्रचार करने के लिए उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था, वो गए सीधा सबसे जो पतित जीवात्माएं हैं जगाई और मधाई, कि अगर इनका उद्धार हो गया तो बाकी सब लोग तो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, और उनको अप्रोच करना खतरे से खाली नहीं था। उसका हम परिणाम भी देखते हैं कि जब ऐसे लोगों को प्रचार करने के लिए गए तो उन्होंने उनके सर नित्यानंद प्रभु के सर पर पत्थर मारा, परंतु फिर भी कैसे वो श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ कर दीजिए, और कैसे फिर उनका उद्धार हुआ। तो हम उदाहरण पढ़ते हैं नित्यानंद प्रभु का। और जैसे यहाँ पर अद्वैत आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से प्रकट होने का, तो उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उनके जीवन से भी हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु खुद क्या सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में जो श्लोक आता है, दक्वा सुदुष्ट्ये सुरप्सित राज लक्ष्मण धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगात अरण्य वर्णम माया मृगान दयतापसित अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कि श्री चैतन्य महाप्रभु हम ऐसे भगवान को प्रणाम अर्पित करते हैं, त्यक्त्वा सुदुष्टेज सुरेप्सित राज लक्ष्मण, त्यक्त्वा उन्होंने त्याग दिया, किसको त्याग दिया, सुदुष्टेज जो सबसे रेयर है इस भौतिक जगत में, बहुत ही रेयर चीज है, क्या सुरेप्सित राज लक्ष्मण, ऐसे सुख को जिसको देवतागण भी इसके पीछे भागते हैं, राज लक्ष्मण जो उन्होंने अपनी युवा उनकी जो पत्नी थी 16 वर्ष की आयु में, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको त्याग दिया, और त्याग कर क्या किया, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगद अरण्यम, जो ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया था, तथा कहते श्राप दिया था कि आपको कोई भौतिक सुख प्राप्ति ना हो, उसके कारण वो जंगल में गए, यानी उन्होंने सन्यास को स्वीकार किया युवावस्था में, सन्यास को स्वीकार करके क्या किया, माया मृगाम दयितावत, जो ऐसे माया मृगाम माया द्वारा आच्छेदित जो जीवात्माएं हैं उनके पीछे भाग रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अन्वधावत उनका उद्धार करने के लिए, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे महापुरुष के चरणों की मैं पूजा करता हूं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन से इस चीज को स्थापित किया, और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य हैं, जो षट गोस्वामी अष्टकम में हम पढ़ते हैं, 6 गोस्वामियों के जीवन से देखें तो उन्होंने क्या किया, तो उनके जीवन में श्रीनिवास आचार्य लिखते हैं, त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति शेनिम सदा तुच्छवत्। सारे उन्होंने क्या किया, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, वो मंडलपति थे, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, उन्होंने दे गिव अप दैट, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति शेनिम सदा तुच्छवत, उसको तुच्छ मानकर, क्यों, जनसाधारण पर कृपा करने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से, नित्यानंद प्रभु के उदाहरण से, यहाँ पर भगवान शिव खुद अपने इस बात को स्थापित कर रहे हैं, और यही चीज हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के जीवन में। शिला लीलामृत में शिला सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज इस प्रकार लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने 2 जगाई और मदाई को उद्धार किया, और शिला प्रभुपाद जो नित्यानंद प्रभु के कृपा के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने ऐसी ऐसे स्थानों पर जाकर और जगाई मदाई जो उस समय जो उनका स्तर था, और जिन जगाई मदाई को शिला प्रभुपाद ने उद्धार किया उनका तुलना अगर की जाए तो लिख रहे हैं, इन लॉर्ड नित्यानंद टाइम प्रभुपाद ऑन सेवरल ओकेशन एक्सप्लेन देयर वर ओनली 1 जगाई एंड मदाई, बट नाउ द वर्ल्ड इज फिल्ड विद जगाई एंड मदाई, कि उस समय सिर्फ एक ही जगाई मदाई का जोड़ा था, अब पूरे विश्व में जगाई मदाई हैं, और शिला प्रभुपाद ने अपनी सेना उन जगाई मदाइयों में से रिक्रूट की। तो उन्होंने किस प्रकार का, जितने भी हम उदाहरण पढ़ते हैं कि कैसे वो जलदूत पर गए, उन्हें हार्ट अटैक हुए, कैसे वो बौर स्ट्रीट में रहे, अब शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हैं किस प्रकार जो शिला प्रभुपाद का संघर्षमय जीवन रहा, इतनी वृद्ध अवस्था में भी वो उन्होंने ट्रैवल किया, पुस्तकों का अनुवाद किया, किस लिए, कृपावश। अगर हम देखें शिला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में पूर्ण रूप से संतुष्ट थे, इनफैक्ट शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक जगत में था भगवान कृष्ण के साथ, और भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जाइए पृथ्वी लोक पर जीवों का उद्धार करने के लिए, तो शिला प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं जाना चाहता, मैं वहां इस भौतिक जगत में, भगवान कृष्ण ने कहा नहीं आप जाइए, बाकी सब चीजों को मैं अरेंज करूंगा। तो शिला प्रभुपाद कैसे पहले इस धरातल पर प्रकट हुए, और फिर हम देखते हैं कैसे राधा दामोदर मंदिर में एक सन्यासी जो रह रहे थे उन सब सुखों को त्याग कर 70 साल की उम्र में शिला प्रभुपाद गए पाश्चात्य देश में, और जैसे हम 85वीं सालगिरह मना रहे हैं इस्कॉन की, तो एक बहुत अच्छा दिवस है इस बात को स्मरण करने का कि शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देश क्यों गए और उनका क्या मिशन था। और शिला प्रभुपाद 1977 में एक प्रसंग आता है कि जब शिला प्रभुपाद की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और तमाल कृष्ण महाराज शिला प्रभुपाद के पास गए और उन्होंने एक इस्कॉन की विल की, विल को हिंदी में क्या कहेंगे, वसीयत की आवश्यकता प्रकट की। तो शिला प्रभुपाद ने कहा मेरे को वसीयत लिखनी चाहिए, और उन्होंने बताया कि कैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी, उनका ऑपरेशन हो रहा था तो ऑपरेशन से पहले उन्होंने वसीयत किस प्रकार से लिखी, उस प्रोसेस को बता रहे थे। परंतु फिर प्रभुपाद कहते वो उन्होंने वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं गए, उसको उन्होंने बाईपास कर दिया, उन्होंने मन बदल दिया कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। तो तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसा क्यों किया, अपना ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया। तो उन्होंने, श्रील प्रभुपाद ने बताया, सबका वैसे सबका अपना मत है, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ऐसा लगता था कि जो डॉक्टर है उसको रिश्वत दी गई है इस ऑपरेशन के माध्यम से मुझे जान से मारने की। और ऐसे ही एक बार जो जात गोसाई, उनका प्रचार इतना सशक्त होता था कि जात वहां के जितने लोकल ब्राह्मण्स हैं वहां गए पुलिस के पास 25,000 रुपए की रिश्वत देने कि हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मार देंगे, आप कोई एक्शन मत लिएगा। तो पुलिस वाले ने कहा हम रिश्वत लेते हैं परंतु एक साधु पुरुष के लिए नहीं। और वो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास और उन्होंने कहा कि ये माहौल चल रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो हम यहां देखते हैं कि कैसे वो इस हद तक करुणा कारण रिस्क उठाने को तैयार होते हैं, क्योंकि खुद की जान को भी खतरा है। श्रील प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक्स आए, बट स्टिल दे आर गोइंग ऑन। व्हाई? आउट ऑफ कॉजलेस कंपैशन। सो दैट वाज द सेकंड सी, कंपैशन। एंड थर्ड इज कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मतलब जो वो इस प्रकार के इस करुणा को प्रकट करने के इस प्रोसेस में वो जितनी भी मुश्किलों का सामना करते हैं वो उनके लिए एक आभूषण का काम करता है जो भगवान को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे यहां पर भगवान शिव ने हालाहल जहर पिया, वो भगवान शिव के गले का क्या बना? एक ऑर्नामेंट बना, आभूषण बना, जिसने भगवान को कैप्टिवेट किया। और इसका उल्टा देखते हैं, आगे राहु वो अमृत पान करेगा, वरन सुदर्शन चक्र आके उसका गला काट देता है। तो जितना गले तक उन्हें अमृत पिया वो तो जीवित रहा, बाकी शरीर की मृत्यु हो गई। परंतु जो राहु है उसको किस तरीके से देखा जाता है, बहुत ही एक अशुभ लक्षण के रूप में उसको जाना जाता है, हालांकि उन्होंने अमृत को स्वीकार किया। यहां पर भगवान शिव जहर पी रहे हैं और इसके लिए उनका गुणगान हो रहा है, और वहां राहु अमृत पी रहा है इसके लिए उसको दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर विषय जहर और अमृत का नहीं है, यहां पर विषय है उसका उद्देश्य, कितना आप निस्वार्थ भाव से अन्य जीवों के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं। वो अमृत पी रहे हैं खुद शक्तिशाली बनने के लिए, परंतु यहां भगवान शिव जहर पी रहे हैं अन्य जीवों पर ये दया करने के लिए। तो ये इस मुश्किलों को, जितनी भी मुश्किलें आती हैं ये भविष्य में या उसी समय, उस समय उस भक्त को ऐसा पता नहीं होता, परंतु भविष्य में जब हम सारी डॉट्स कनेक्ट करके हमें पता लगता है कि इट एक्ट एज अ आभूषण। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में, श्रील प्रभुपाद ने कितने ही कठिनाई से वो पाश्चात्य देश में गए, 1 साल तक संघर्ष किया, रहने की जगह भी नहीं थी। अब ऐसे कितने ही लोग पाश्चात्य देश में गए होंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा भी कि प्रभुपाद आप यहां पर क्यों आए हैं, तो प्रभुपाद ने पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं एक बिजनेसमैन हूं। आप यहां पर क्यों आए हो, उन्होंने कहा बेटर प्रोस्पेक्ट्स। श्रील प्रभुपाद ने कहा सेम हियर, बेटर प्रोस्पेक्ट्स, यहां पर अच्छा अवसर है प्रचार करने का। तो कितने ही लोग पाश्चात्य देश गए होंगे परंतु उनका हम कहीं गुणगान नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि वो गए थे अपने लिए, ऐसा नहीं कि जनसाधारण का हित करने के लिए वो गए थे निस्वार्थ भाव से। तो इसलिए सारी मुश्किलें ये कार्य करती हैं इन चीजों को स्वीकार, भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। वैसे तो देखा जाए यहां कितने ही लोग इस प्रकार के जहर को स्वीकार कर रहे हैं, किस इतनी प्रकार की कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं। हम पढ़ते हैं कृष्णा पुस्तक में कि कैसे भौमासुर का उदाहरण आता है कि भौमासुर अपने सिर को काटने के लिए तैयार था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, परंतु उसके पीछे उद्देश्य क्या था? ऐसा वरदान मांगना कि जिसके सर पर हाथ रखूं उसको नष्ट कर दूं। तो भौमासुर को हम ऐसा नहीं कि उसका गुणगान करते हैं, परंतु यहां पर गुणगान किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि निस्वार्थ भाव से वो जन साधारण के लिए ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए इस उद्देश्य से अगर कोई कार्य करता है तो इसमें जितनी भी मुश्किलें आए, अगर पर्पस ये है तो जितनी ज्यादा मुश्किल आएंगी उतना ज्यादा वो भगवान को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और हम यहां देखते हैं कि भगवान शिव ने जहर को पिया, तो ये जहर क्या है, इसका फिगरेटिवली अगर मतलब इसका हम कंपेयर करें, तो एक रिसर्च कर रहे थे कि पॉइजन डाल के वेदाबेस में, तो कई सारे प्रसंग आए जहर के। एक एक इंसिडेंट आया, यमुना देवी दासी शिला प्रभुपाद से पूछती हैं कि प्रभुपाद आपका सबसे फेवरेट भजन कौन सा है। शिला प्रभुपाद ने पूछा आपका कौन सा फेवरेट भजन है, तो उन्होंने कहा शिक्षाष्टकम की प्रार्थना है। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरा जो सबसे फेवरेट भजन है वो है हरि हरि विफले जन्म है काइनो मनु। कल इसके सभी लोचन वो भी इसको बता रहे थे कैसे मनुष्य जन्म पाइए राधा कृष्ण ना भजे जान्य शून्य विष खाया, कि मनुष्य शरीर पाने के बाद भी राधा कृष्ण को नहीं भजा तो जानिया शून्य विष खाए ना। प्रभुपाद कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर के भजन दे आर सो फुल ऑफ डेप्थ, कि इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। तो विष, एक विष क्या है, कोई सेंस ऑब्जेक्ट जो विषय भोगने की वासना है, ये विष का कार्य करती है। और श्री चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि अगर आप एक स्त्री से आकर्षित हो रहे हैं इट्स मच वर्स देन पॉइजन। क्यों? क्योंकि पॉइजन जो है शरीर को एक बार मारता है, परंतु जो काम वासना है उसकी वजह से उस जीवात्मा को बार बार शरीर लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक साधारण विष से और अधिक खतरनाक है, तो एक पॉइजन है। उसके बाद एक अलग प्रसंग मिला कि कैसे एक दूसरा पॉइजन क्या है, पॉइजन ऑफ इम्पर्सनलिज्म, मायावाद का विष। मायावाद अर्थात किसी व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में ना देखकर उसे एक साधारण ऑब्जेक्ट के रूप में देखना, एक्सप्लॉइट करना, और सिद्धांत की दृष्टि से कि भगवान और जीव में अंतर ना समझना, ये जो सिद्धांत है ये विष का कार्य करता है। शिला इस्कॉन के शुरुआती दिनों में भी शिला प्रभुपाद के कुछ शिष्य इस प्रकार के फिलॉसफी का प्रचार कर रहे थे, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं इट्स पॉइजनस एंड आई नो वेयर दिस पॉइजन इज कमिंग फ्रॉम। तो ये मायावाद भी एक पॉइजन है कि जब हम व्यक्ति को व्यक्ति की तरह ना देखना, इम्पर्सनलिज्म, उसको पर्सन की तरह ना देखना, उसको ऑब्जेक्ट की तरह देखना और उसकी अवहेलना करना, तो ये एक दूसरे प्रकार का विष है। और फिर एक तीसरे प्रकार का विष शिला प्रभुपाद बताते हैं कि एक विष, ये जो साधारण विष होता है इंद्रतृप्ति जो इसके विषय है, और ये मायावाद का विष, तो इन सब बातों से हम व्यवहारिक रूप में क्या ले सकते हैं कि अब कोई कह सकता है कि भगवान शिव और जितने हमने उदाहरण दिए शिला प्रभुपाद और ददीची मुनि, ये सब तो महान वैष्णव गण हैं, ये इस प्रकार का करुणा प्रकट कर सकते हैं, तो हमारे जीवन में ये करुणा किस प्रकार से प्रकट हो सकती है, तो प्रैक्टिकली हम इसको इससे क्या ले सकते हैं। निश्चित रूप से अगर वर्तमान स्थिति में हमारे शायद ऐसा स्तर ना हो कि जिस प्रकार से भगवान शिव, एटलीस्ट मेरा ऐसा नहीं है कि भगवान शिव जिस प्रकार का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं तप्यंत लोक तापेना, कि अन्य लोगों के दुखों के कारण स्वेच्छा से इस दुख को स्वीकार करते हैं और यहाँ पर भगवान शिव खुद हालाहाल विष को पी रहे हैं, परंतु हम ऐसे वैष्णव आचार्य जो हैं, ये महाजन हैं, इनके द्वारा इनके हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं निश्चित रूप से। कैसे? क्या करके? फर्स्ट शिला प्रभुपाद बता रहे हैं अगर हम, जैसा हमने आज के इसमें डिस्कस किया, पहला सी है क्रेडिट, दूसरा सी है कंपैशन और तीसरा सी है कैप्टिवेट करना। हम भी ये जो क्रेडिट, भगवान हमें भी क्रेडिट दे सकते हैं, ये करुणा हमें भी उजागर निश्चित रूप से हो सकती है और हम भी भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम जो आचार्यों के द्वारा दिया गया वह प्रोसेस है उसको हम सख्ती से पालन करें, उसका सबसे पहला पार्ट है इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और चार नियमों को पालन करना। शिला प्रभुपाद इस प्रकार कह रहे हैं, प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं कि इस विश्व को छोड़ने से पहले वे शुद्ध भक्तों का एक परिवार बनाएं जिससे कृष्ण भावनामृत की शिक्षाएं का प्रचार हो। और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जितने भी प्रचारक हैं और कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जो भी सदस्य हैं वो कुछ ना कुछ प्रचार कर ही रहे हैं, चाहे बोल के चाहे अपने व्यवहार से, कुड बिकम प्योर डिवोटीज, वो शुद्ध भक्त बन सकते हैं इन रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को पालन करके, पापमय जीवन से बचकर और हरे कृष्ण महामंत्र को नियमित रूप से जप करके। सिर्फ इस प्रकार से ये भक्त दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। अगर हम वास्तव में दूसरों की सहायता करना चाहते हैं तो चैरिटी बिगिंस एट होम। कल इसके अविलोचन प्रभु बता रहे थे इस उल्लंघ भक्ति बृहद भागवत महाराज के लेक्चर से कि महाराज कहते हैं कि तीनों चीजें साथ बैलेंस होनी चाहिए। प्रचार का कार्य, प्रचार खुद को, भक्तों के समाज में और जनसाधारण को, तीनों साथ साथ चलना चाहिए। तो सबसे पहला है खुद को प्रचार करना। इसकी शुरुआत होती है इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को धारण करके, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और चैंटिंग, इसमें स्ट्रिक्टली इसको स्वीकार करके। उसके बाद जब हम इसको कर रहे हैं इसका परिणाम होगा हम ये जो संदेश है, जो प्रोसेस हमें मिला है, अन्य लोगों से इसको शेयर करके, प्रचार करके। एक बार लंदन के अंदर मिस्टर कुमार थे इनका नाम था, जो प्रभुपाद अक्सर इस्कॉन लंदन में वो रहने आया करते थे। तो एक बार वो प्रभुपाद से आए ये प्रश्न पूछने के लिए कि प्रभुपाद मैं इस्कॉन में सेवा करना चाहता हूं परंतु मुझे उस सेवा के बदले थोड़ा सा धन राशि चाहिए जिससे मैं अपनी माता को लंदन से भारत भेज सकूं। तो प्रभुपाद ने कहा हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने सदस्य हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं बिना वेतन के, कोई एक पैसा नहीं लेते, तो हम आपको कोई पैसा नहीं दे सकते। तो उसके बाद मिस्टर जो ये कुमार थे इन्होंने कहा, इन्होंने कई सुझाव दिए इस्कॉन को सुधारने के लिए कि कैसे इस्कॉन को और सुधारा जा सकता है अगर सभी भक्तों को संस्कृत पढ़ाई जाए और उनको एक स्कॉलर बनाया जाए। प्रभुपाद इस बात से बहुत ही असहमत थे। उन्होंने कहा ऑल वी नीड इज डेडिकेशन। उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित नहीं हूं परंतु किसी ना किसी तरह मैं खींच रहा हूं, पुलिंग ऑन, और यहां तक कि जो जितने स्कॉलर्स हैं उनका रिव्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। और फिर उदाहरण दे रहे हैं मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज गौर किशोर दास पाजी महाराज, वो इलिटरेट थे परंतु उनके जो शिष्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने जमाने के सबसे महान स्कॉलर थे, परंतु जब भी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते थे उस शास्त्र से बोलते थे। तो हमारा सिद्धांत ये नहीं है कि हम समय लेके कुछ सीखें उसमें दक्ष बने और उसके बाद प्रचार करें। हमारा सिद्धांत ये है आपको जो कुछ आपको पता है उसको प्रचार कीजिए, सुबह की क्लास, शाम की क्लास, और अगर वो मेरी पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो ये पर्याप्त है। तो जो कक्षा में सुन रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, उसको आप बताने प्रयास कीजिए प्रचार। और प्रचार अन्य किस प्रकार से हो सकता है, पुस्तक वितरण के माध्यम से, जैसे कि श्रील प्रभुपाद के समय कितना प्रभुपाद बल देते थे कि ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का वितरण किया जाए। और यहां पर एक पॉइंट है, यहां वॉलंटियर, यहां लिखा है कि वैष्णवगण स्वेच्छा से सफरिंग को स्वीकार करते हैं। तो कभी कभार इसको एक मिसअंडरस्टैंड भी किया जा सकता है कि अभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए हैं तो जन साधारण के लिए मैं खुद सफरिंग लूंगा, कुछ खाऊंगा पियूंगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा वेट कैरी करूंगा और सुबह से रात तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता रहूंगा। तो यहां पर अपना बैलेंस लूज करने के लिए नहीं कहा गया है निश्चित रूप से, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है उस पल के लिए, इस मोमेंट के लिए बहुत ज्यादा सफरिंग ले लेते हैं इस कंसेप्शन के अंदर और फिर बाहर लंबे समय तक बीमार भी पड़ जाते हैं। तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश, तो इसमें कहीं भी बैलेंस लूज करना, क्योंकि हम लंबे समय तक इस सेवा कर सकें। और हम देखते हैं निश्चित रूप से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भी देखें, हमने कुछ ना कुछ स्वेच्छा से किसी ना किसी कष्ट को स्वीकार किया ही है। जैसे हम शुरू शुरू में जुड़ते हैं, पहले एक माला करना कितना कष्टदायक लगता था, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाया। 16 माला करना रोज 2 घंटे, अगर बाहर किसी को कहें आप कितनी देर ध्यान लगाते हैं, लोग 10 मिनट 15 मिनट, कहें 2 घंटे ध्यान लगाता हूँ 16 माला करता हूँ, तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। परंतु 16 माला करना क्या आसान है, और खासकर ध्यान पूर्वक करना और प्रतिदिन करना, तो निश्चित रूप से हमने कुछ ना कुछ चीजों को स्वीकार किया। तो 4 नियमों को स्वीकार किया, कुछ ना कुछ कष्ट को लिया, मंगल आरती आए, चाय छोड़ी, तो कुछ ना कुछ हम ऑलरेडी हमने स्वीकार करके स्टेज तक आए हैं। तो परंतु अब क्या करें, जस्ट एक एक स्टेप लेकर इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएं। मैं यहीं पर विराम दूंगा इस आखिरी स्लाइड के साथ, इस कंटेम्पलेशन के साथ, कि इस पर आप विचार कर सकें। 1.01 raised to power 365 = 37.8 एंड 0.99 raised to power 365 is 0.03। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर शुरुआत करें एक अपने कंफर्ट जोन के दायरे से सिर्फ 0.01 कदम आगे निकलने का, परंतु उसको अगर प्रतिदिन करते हैं 0.01 कदम एक आगे निकल लें, मान लीजिए मंदिर आ रहे हैं, दूसरों को अप्रोच करने बहुत झिझक लगती है, एटलीस्ट एक व्यक्ति को बुक देकर निमंत्रण कर ले मंदिर में आने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहें। तो रोज कोई ना कोई एटलीस्ट एक कार्य ऐसा करें, तो पूरे साल के अंत में आप देखेंगे एक्युमुलेट होता होता वो बहुत बड़ा आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर भगवान शिव अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान कृष्ण उनको श्रेय प्रदान कर रहे हैं, और भगवान शिव आगे भगवान कृष्ण को श्रेय प्रदान करेंगे, पहला क्रेडिट, दूसरा कंपैशन आउट ऑफ करुण, जो उनका करुणा थी उसकी वजह से उन्होंने हाल हाल विश्व को स्वीकार किया। उसी प्रकार से हम भी एटलीस्ट एक कदम आगे ले सकते हैं, खुद पे करुणा के लिए और अन्य लोगों पे करुणा के लिए। और तीसरा, ऐसा करने में हम जितना भी अनकंफर्ट या ऑब्स्टेकल्स को महसूस उसको फेस कर रहे हैं, वो भगवान को उतनी ही ज्यादा आकर्षित करेगी, इट विल कैप्टिवेट लॉर्ड। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की, नितय गौर प्रेमानंदे।